يسألونك ماذا أحل لهم، وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ حلال کیا گیا ان کے لیے. اب یہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ سوال ایسے ہیں جو کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اور یہ وہ سوال ہیں جو قرآن پاک میں کچھ جگہوں پہ آئے ہیں، بعض کہتے ہیں 15 جگہوں پہ، بعض میں 13 بھی پڑھا ہے، باہر کیف 15 دفعہ یہ آئے ہیں سوالات. اب اس کے اندر صحابہ نے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا، جیسے یہاں پہ آتا ہے یسألونک ماذا احل لہم، وہ سوال کرتے ہیں کیا کچھ حلال کیا گیا ان کے لیے، یعنی کیا کچھ ہے حلال، تو کیا ابھی بتا تو دیا گیا، پھر کیوں سوال انہوں نے یہ کیا؟ اس لیے کہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی تھی. ویسے صحابہ بہت زیادہ سوال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ انتظار کرتے تھے کوئی بدو آئے وہی سوال کر لے، کثرت سوال سے کیونکہ منع کیا گیا تھا، انلیس کہ کوئی بہت ہی کنفیوژن کی بات ہو. اب یہ کنفیوژن یہ ہو گئی کہ بنی اسرائیل میں تو بہت ساری چیزیں انہوں نے خود ہی حلال یا حرام کی ہوئی تھی، تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ اور دوسرا یہ وما اکل السبع، یہاں پہ کہا گیا نا جو دنندہ چیر پھاڑ دے تو اس کو بھی نہیں آپ کھا سکتے، تو وہ تو شکار کرتے تھے، شکاری کتے ان کے پاس ہوتے تھے، وہ ان کو بھیجتے تھے، تو شکاری کتا اگر کچھ یعنی کاٹ کے کچھ وغیرہ اس کے دانت لگیں گے کچھ پکڑے گا تو کیا وہ بھی کھا سکتے ہیں؟ یا وہ بھی اسی میں آ گیا سبو کی درندہ، کتا بھی ایک درندہ ہی ہے، اس نے کھا لیا اس میں سے، تو کیا وہ ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ تو اس کو یہاں پہ بتایا گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے جہاں پہ بھی یسألونا کا آئے گا پھر آگے کل آتا ہے، سورۃ طہ میں صرف فکل آیا تھا، یہاں پہ ہے کل. تو انہوں نے سوال کیا کیا ہے حلال ان کے لیے، یعنی پورا نہیں سوال بتایا گیا لیکن اس بارے میں سوال تھا کہ ان کے بارے میں کیا ہے کہ جو شکار ہم کر کے لاتے ہیں تو وہ اس کا کیا حکم ہے. قل کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، تمہارے لیے تمام طیب چیزیں، پاک چیزیں، صاف ستھری چیزیں وہ حلال ہیں. دیکھیں شریعت کا معیار کتنا خوبصورت ہے کہ پاک چیزیں، لیکن آپ پاک چیزوں کو کون بتائے گا کہ کون سی پاک چیزیں؟ میری اور آپ کی مرضی سے تو نہیں چیزیں پاک ہوگی کہ یہ میرا دل کرتا ہے تو اس لیے میں اس کو پاک. اب آپ اللہ معاف کرے ان چائنیز کے پاس چلے جائیں، وہ کہیں گے جی وہ بھی بڑا پاک ہے جو سانپ ہے، اور کتے بھی پاک ہیں، وہ تو ان کو بھی پاک کر دیں گے. تو یہ ہماری کہنے سے نہیں پاک ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پاک قرار دیا وہ وہی چیزیں ہیں جو حلال ہیں، اور حلال طریقے سے آپ ان کو حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کہہ دیجئے آپ، اے نبی آپ کہہ دیں کہ حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے جو بھی طیب چیزیں ہیں. اچھا اب ایک بات کو بہت دھیان رکھیے گا کہ بعض دفعہ جب ہم کچھ دین میں آگے تھوڑا بڑھنے لگتے ہیں نا تو ہمارا کیا کام ہو جاتا ہے، ہر چیز کو حرام حرام حرام، یہ بھی حرام وہ بھی حرام، پر حرام کرنے کا ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے حرام کرنا کسی چیز کو اتنی بڑی بات ہے، یہ سوائے اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کے کسی اور کے پاس اتھارٹی نہیں کہ وہ چیزوں کو حرام کرے، سمجھ آئے؟ کوئی اور یہ اتھارٹی نہیں رکھنا، اس لیے بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے یہ بات کہ فلاں چیز حرام ہو گئی فلاں چیز حرام. جیسے آپ حلال نہیں کر سکتے اسی طرح حرام بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا بات ہے تمہیں یہ ایمان والا، تم کیوں حرام کرتے ان چیزوں کو جو طیب ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق دیا ان کو کیوں حرام کہتے؟ تو خود نہیں آپ کر سکتے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ساری چیزیں کھانے کی بھی حلال ہیں سوائے ان کے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں. ٹھیک ہے، وما علمتم من الجوارح، اور جو سکھایا تم نے کس کو؟ من الجوارح، شکاری جانوروں کو، مکلبینا، جن کو تم شکار کی تعلیم دیتے ہو، ان شکاری جانوروں کو جو تم نے سکھایا وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. یہ مطلب نہیں کہ وہ شکاری جانور حلال ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ جو وہ پکڑ کے لے کر آتی ہیں، جن کو تم نے سدھایا ہوا ہے، جن کو ہم کہتے ہیں نا سدھائے ہوا جانور ہے، یعنی آپ پتہ ہے کتوں کی بھی ایسی ٹریننگ ہوتی ہے جس سے وہ شکار کو کیسے پکڑنا ہے، کون سے شکار کو پکڑنا ہے، کیا ہے، پھر ان کو چھوڑتے ہیں تو وہ پکڑ کے لاتے ہیں. پھر تو تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم سکھاتے ان کو اس میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا، تم نے جو ان جانوروں کو سدھایا ہے وہ اس علم میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا. تو کیا مطلب ہے؟ اللہ نے تو کوئی وحی نہیں اتاری اس بارے میں کہ شکاری جانور کو کیسے سدھانا ہے، ایسی تو کوئی وحی نہیں ہے. پھر کیا اس کا مطلب ہوا مما علمکم اللہ؟ یہ بڑا ایک زبردست خوبصورت پوائنٹ ہے یہاں پہ، وہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے نا انسان کی فطرت میں علم رکھ دیا. और इंसान अपनी अकल से जिन चीजों को, जिस नॉलेज को एक्वायर करता है, वो अल्लाह की तरफ से ही है। जैसे आदम अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने, आपको बताया था सूरह बकरा में, अल्लाह ताला ने उलूम सिखाए थे ना, वो दुनियावी उलूम जो आदम अलैहि सलाम को, जिनको हम कहते हैं ना दुनियावी उलूम, चीजों के नाम जो सिखाए थे, वो वदियत कर दिए हैं इंसान के अंदर, रख दिए हैं। अब इंसान उनको एक्सप्लोर करता है, अपनी अकल से उनको एक्वायर करता है उस नॉलेज को। तो वो सारे उलूम अल्लाह की तरफ से ही सिखाए हैं। इसीलिए मैं आपको पहले भी हमेशा कहती हूँ कि ये कोई चीज नहीं होती कि ये दुनियावी इल्म है और ये दीनी इल्म है और ये है। ये जो हमने तकसीम की हुई है ना, ये हमने खुद ही की हुई है। हालांकि ये तकसीम सही नहीं है। क्यों क्यों सही नहीं है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखें, याद रखिए, जो जो इल्म भी, जो तालीम भी आप जिस मकसद से ले रहे हैं ना, वो उसको बताती है कि ये दीन का इल्म है या फिर दुनिया का इल्म है। समझ आई कि किस मकसद से आपने पढ़ा है? हर इल्म अल्लाह का इल्म है, अगर वो इस मकसद से है कि इसके जरिए अल्लाह की पहचान हो, इसके जरिए मैं अपने दीन की खिदमत करूं, इसके जरिए से मैं अपनी दीन को बेहतर करूं, या इसके जरिए मैं अपनी इबादत को बेहतर करूं, या इसके जरिए मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत करूं और अल्लाह को राजी करूं, ठीक है, तो ये दीन का ही इल्म बन जाता है। मिसाल के तौर पे कोई कोई साइंटिस्ट है, उसने एक, मिसाल के तौर पे, एक वैक्सीन निकाला है एक बीमारी के लिए, जिससे बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। तो ये क्या है? अगर उसकी नीयत ये है कि ये अल्लाह की मखलूक है और मैंने इसको फायदा देना है, मेरी जात से खैर आए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे ज्यादा बेहतरीन हुआ जो सबसे ज्यादा नफामंद हो लोगों के लिए, तो मैंने वो नफामंद बनना है। तो वो ही जो इल्म है ना, वो दुनिया का इल्म नहीं है, अब वो ही दीन का इल्म। लेकिन आपको मैं दूसरी मिसाल देती हूँ। एक बंदा है, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स की तकमील के लिए कोई इल्म हासिल करता है, तो चाहे वो कुरान का इल्म है, चाहे वो हदीस का इल्म है, वो दुनियावी इल्म है। अगर वो अपनी ख्वाहिश नफ्स की तकमील कर रहा है, मसलन है कि मुझे शोहरत मिल जाए, मुझे लोग आलिम कहें, मैं बड़ी बन बन के बैठूं, मैं यहाँ पे लेक्चर दिया करूं, मेरी भी कोई वाह-वाह हुआ करे, मैं मशहूर हो जाऊं, मेरे ऐसे ये इस तरह की मुझे पैसे मिल जाएं, ऐसे ये इजी मुझे कोई जॉब मिल जाएगी, इस तरह ये इजी वे है पैसे कमाने का, इस तरह की चीजें, तो ये दुनियावी इल्म, ठीक है। और कोई ये कह रहा है कि मैं कोई मेडिकल की तालीम लेके इंसानियत को दर्द में जो हो उसको, उसके दर्द में काम आऊं, लोगों के दर्द दूर करूं, उनकी तकलीफ से उनको निकालूं, तो वो एन दीन का इल्म हो गया। क्योंकि ये सारे उलूम अल्लाह ने दिए हैं। आपका मतलब ये मैथ, साइंस, मेडिकल, ये खुद इंसान लेकर आया? ये अल्लाह तला ने दिए हमें, ये उलूम अल्लाह की तरफ से है। तो ये जो इवन कुत्तों को सुधाने का, शिकारी जानवरों को सुधाना, ये भी अल्लाह ताला ने अपनी तरफ निस्बत की, ये अल्लामकुमुल्लाह, अल्लाह ने तुमको सिखाया। तो और इल्म तो इससे कहीं ज्यादा ऊला है कि उनको आप कहें कि वो भी अल्लाह ने सिखाए, वो इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं कि आप उनको कहीं अल्लाह ने सिखाए, चाहे वो कोई मेडिकल का है, चाहे वो कोई इमारतें तामीर करने का है, चाहे कोई और किसी किस्म का इल्म है जिससे इंसानियत को फायदा हो सकता है, वो सब अल्लाह ने सिखाए। ये समझ आ गई बात आज? और इसी से उलमा ने ये बात भी कही कि क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया मिम्मा अल्लामकुमुल्लाह, तो इसलिए जो सिखाने वाला होना चाहिए ना, सुधाने वाला इन जानवरों को, वो भी मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि जो मुसलमान होगा, ट्रेनर जब मुसलमान होगा, तो फिर वो जाहिर है वो ही है जो कि जिसको अल्लाह ताला ने इल्म सिखाया। और वो उन्होंने यहाँ से, मुफस्सिरीन ने कुछ नहीं यहाँ से लिया इस चीज को, इस पॉइंट को लिया, बार क्या फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, तो तुम खाओ उसमें से जो रोक रखे तुम पर, यानी अब ये आप जानवर को छोड़ा और वो कोई शिकार पकड़ के लेकर आया, तो वो मालिक के लिए लेकर आया, उसको पता है कि इसमें से मैंने खुद नहीं खाना, तो वो मालिक के लिए उसने रोक के रखा है, तो अब ये जायज है खाना। वज़कुर उस्मल्लाह अलैह, और जब जानवर को छोड़ो, यानी शिकार के लिए, आपने देखा होगा कभी, अगर आप इस पे देख सकते हैं सर्च करके, वो कुत्ते और वो इतने इतने तेज होते हैं वो, और उनको जूं ही वो छोड़ते हैं, वो गोली की स्पीड से जाते हैं शिकार की तरफ ना। ये भी देखिए अल्लाह ताला की बहुत ही बड़ी एक मस्त, सुभान अल्लाह, वे कैसे अल्लाह ताला ने इल्म दिया और कैसे इन शिकारी जानवरों को सुधाया जाता है, और कितनी तेजी से ये लपकते हैं अपने मालिक के एक इशारे के ऊपर। तो अगर तो रोक के रखा है ना, फिर तो आप खा सकते हैं। अगर नहीं, उसने मालिक के नहीं रोक के, मालिक के लिए नहीं रोका और खुद उसमें से उसने खा लिया, तो फिर हराम है। लेकिन आप देखेंगे जो सुधाए हुए कुत्ते होते हैं या सुधाए हुए जानवर होते हैं, फिर वो खुद नहीं खाते, यही तो उनकी ट्रेनिंग होती है। बस कुर उसमल्ला ही अल्लाह, ये अल्लाह का नाम उस पे लो, यानी बिस्मिल्ला ही अल्लाह अकबर कह के या बिस्मिल्ला कह के उसको छोड़ो जानवर को। वत्तकुल्ला, और डरो अल्लाह से, यानी तकवा इसी चीज का तो नाम है कि हर काम करते हुए इंसान को ये हो कि अल्लाह इस काम से मेरे अल्लाह तो नहीं नाराज हो जाता, मैंने अपने अल्लाह को नाराज नहीं करना। बस इन अल्लाह सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्द जल्द हिसाब लेने वाला है, यानी हिसाब तो ज्यादा देर लगनी नहीं है, मरते ही शुरू हो जाना। तो ये सारी वो चीजें हैं जिनका जिनको सीरियस लेना जरूरी है, इसलिए कहा गया कि ये अल्लाह ताला जल्दी हिसाब लेने वाला है, यानी इनको ऐसे इग्नोर ना कर देना, जल्दी हिसाब हो जाना तुम्हारा, या उनको लाइट ना लेना। अल्यौम अहिल्ल लकुम अत्तय्यिबात, आज के दिन तय्यिबात तुम्हारे लिए हलाल कर दी गई। फिर दोबारा बताया गया तय्यिब चीजें, क्योंकि बाज दफा इंसान तय्यिब चीजों को अपनी अपनी तौर पे डिफाइन करता है, तो बता दिया गया कि जो भी पाक हलाल चीजें हैं वो तुम्हारे लिए आज हलाल कर दी गई, यानी जो कुरानो हदीस में आई है। जिन ये भी इसका मतलब है कि यानी अब दीन जो मुकम्मल जो हो गया, तो अब वो चीजें जो बनी इसराइल ने कोई अपने यहाँ पर हलाल कर दी, हराम कर दी नहीं थी, कोई कुछ कर दी थी, या अल्लाह ताला ने उनके ऊपर हराम कर दी थी उनकी बाज गलत कामों की वजह से, वो अल्लाह ताला ने बता दी है कि तय्यिब जितनी भी उनमें है वो सारी तुम्हारे लिए हलाल है। व तआमुल्लदीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम, जो ताम है जो खाना है उनका, जो अहले किताब है किताब वाले हैं, उनका खाना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया। उनका कौन सा खाना, यहाँ पे उनकी सब्जियों और फ्रूट्स और इनकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे उनके गोश्त की बात हो रही है, क्योंकि सब्जियां वगैरह ये वगैरह चीजें तो आप किसी की भी लेके खा सकते हैं, आप कोई मुशरिक है उसकी भी खा सकते हैं, उससे भी लेके खा सकते हैं, कोई और देहरिया उसकी भी खा सकती हैं। तो अहले किताब का यानी गोश्त, उनका ताम से मतलब है गोश्त, वो आप खा सकते हैं। अब एक बात यहाँ पे सवाल आता है कि उनका गोश्त कैसे खा सकते हैं। देखें, उनकी भी किताबों में आपको पता है कि यही जिबाह का तरीका था जो हमारे यहाँ है। अब वो अलग बात है कि उन्होंने बाज में चेंज कर दी, बाज उसको फॉलो ही नहीं करते, जैसे यहूदी तो आज तक फॉलो करते हैं, यहूदियों का कोशर है वो जिबा ही का तरीका है, इसलिए उनका हलाल किया गया कि उनका एग्जैक्ट सेम है, तो वो फिर आप खा सकते हैं। मगर ईसाइयों ने अपना छोड़ ही दिया, अपना तरीका ही बदल दिया। तो ताम से समझ आ गई ना, ताम से मतलब है कि यानी उनका गोश्त वो जो उन्होंने अपने मुताबिक किया हुआ, जो उनकी किताबों में भी वैसे ही है, और वो ही तय्यब होगा ना, वही जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में पाक साफ है, वो जो गोश्त जिबा किया गया, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर वो मर गया तो वो तय्यब नहीं है, ठीक है। तो आप अहले किताब का भी मुर्दार नहीं खा लेंगे, वो हलाल नहीं हो जाएगा। देखें, आप इससे ही सोच लें, फिर बाज लोग यहीं से दलील लेके कहते हैं नहीं तो फिर क्या, कुरान में तो लिखा हुआ है अहले किताब का खाना जायज है गोश्त, तो वो तो आपको मुसलमान भी अगर मुर्दार देगा आप तो वो भी नहीं खा सकते, अहले किताब का कहां से खा सकते हैं आप। अहले किताब तो खिंजीर भी खाते हैं, तो आप कहेंगे अहले किताब का तो खाना हलाल है तो हम तो खिंजीर खा लें। नहीं, मैंने आपको बताई वजह कि क्यों कहा गया उनका गोश्त, क्योंकि उनकी किताबों में भी तरीका यही था, इस वजह से कहा गया। वरना वला ताकुलू मिम्मा लम यूज़कर इस्मुल्लाह अलैहि, अल्लाह ताला ने कहा है तुम ना खाओ, सूरह अनाम में मैंने आपको बताया ना, मत खाओ वो जिसपे अल्लाह का नाम ही ना लिया जाए, तो अगर वो अल्लाह का नाम नहीं ले रहा है तो नहीं खा सकते। हाँ, तरीका भी वही होना चाहिए जो जिबा का है, जिसके अंदर वो चार रगे कटनी चाहिए जो कि जानवर की काटी जाती है, पूरी गर्दन ना उतारी जाए, और वो रगे काट के जिससे खून बह पड़े और नाम अल्लाह का लिया जाए, ये दो शरायत है जिबा की। अगर वो शरायत ही नहीं पूरी करते, और यही उनकी शरीयत में भी था, तो फिर कैसे खाएंगे। तो ये मतलब नहीं है कि अहले किताब का है तो जो मर्जी खा लो, अब वो आपको जैसा भी गोश्त दें वैसे, आप मुझे बताएं अहले किताब आपको गला सड़ा गोश्त दे दें खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे। तो आप कहेंगे नहीं गला सड़ा तो नहीं मैं खा सकती ना, हमें तो तय्यब खाने को कहा गया। तो तय्यब ये भी है तय्यब कि जो हलाल है, जो जबीहा है, और उनको भी ऐसा ही खाना चाहिए। अतआमुकुम हिल्लुन लहुम, तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है और उनका खाना तुम्हारे लिए हलाल है। अब कुछ मुसलमान आए थे, बुखारी में हदीस है कि कुछ मुसलमान आए कहने लगे कि हमारे पास कुछ लोग हैं, वो हमें गोश्त देते हैं, हमें पता नहीं है कि उन्होंने सही जिबा किया या नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम बिस्मिल्लाह कह के खा लिया करो। अब इन्होंने इस हदीस को लेके और उन्होंने कहा अब सारे गोश्त जो भी मैकडोनल्ड से मिले, कहीं से भी मिले, बिस्मिल्लाह कह लो और खा लो। हालांकि आपको पता है इसी हदीस में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि ये सवाल उन मुसलमानों के बारे में था जो नए नए मुसलमान हुए थे। यानी अब हो सकता है नए नए मुसलमान हुआ तो अब थोड़ा सा होता है ना कि इनको पता नहीं इतना सेंस है भी या नहीं, इन्होंने जिबा पता नहीं सही तरीके से किया या नहीं किया, या इनको उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना याद भी रही या नहीं रही याद, तो पता नहीं है कि इन्होंने सही भी किया था जिबा या नहीं किया। तो तब आपने फरमाया तुम बिस्मिल्लाह करके कर लो, यानी ट्रस्ट करो अपने मुसलमान भाई को। वो मुसलमान है, अगर वो नाम भी लेते तो अल्लाह का ही लेता। अगर इसीलिए मुसलमान अगर भूल भी जाए ना जिबा करते हुए अल्लाह का नाम लेना, तो तब भी वो जानवर हलाल है, इसलिए कि अगर वो लेता तो अल्लाह ही का नाम लेता। ठीक है, तो वो भूल सकता है, मतलब नया नया मुसलमान हुआ है उसको नहीं याद रहा। तो इसलिए इस हदीस को लेकर और ये कहना कि हर तरह का ही हलाल हो गया, ये जायज नहीं है, ये सही नहीं है। तो यहां पे ये क्यों कहा गया होता आमुकुम हिलुल लहुम, तुम्हारा खाना हलाल है उनके लिए। ये मतलब नहीं कि हम अब उन खाना लेके उनके पास चल पड़े और कहें देखो जी आप हम ये गोश्त खाएं क्योंकि हमारी बुक में लिखा हुआ है कि तुम्हारे लिए भी ये जायज है। ये बताना मकसूद है कि यानी शरीयत सेम है इस बारे में, जो तुम्हारा तरीका जिबा है वही उनका तरीका जिबा है, जो उनका तरीका जिबा है वही तुम्हारा तरीका जिबा है, सेम है। हलाल और कोशर और ये सेम चीजें हैं। वल मोहसनातु मिनल मोमिनाति वल मोहसनातु मिनल लदीना उतुल किताबा मिन कबलिकुम। अब ये आगे आया शादी के बारे में। देखें, याद रखें, इंसान की ना दो जरूरतें हैं, एक है खाना पीना, उससे भी उसका सर्वाइवल है, उसकी जिंदगी का बेस है, और उसकी नस्ल आगे चलना, ये भी तो उसके लिए एक उसकी बका है। इसके अंदर एक इंसान की बका खाने से है ना, सर्वाइवल है, और एक शादी भी, क्योंकि उससे नस्ल चलेगी। अगर वो शादी नहीं करता तो उसकी नस्ल खत्म हो गई, खत्म हो गई इंसानी वो उसके आगे सिलसिला। तो अब शादी के ऊपर बात आई, अब शादी की बात के लिए बताया गया कि अब निकाह भी किन से करना है। वल मोहसनातु मिनल मोमिनात, वो पाक दामन औरतें जो मोमिनों में से हैं, और वो पाक दामन औरतें मिनल लदीना उतुल किताब मिन कबलिकुम, जो अहले किताब में से हैं, जो तुमसे पहले। अब अहले किताब की भी देखें, उतुल किताब दिए गए किताब, ये मतलब नहीं कि हम सब सोच लें वो हिंदुओं को भी तो किताब दी गई है, उनके पास तो भी तो गीता है, वो फलाने के पास कोई और है, कुछ किसी के पास कोई, हर एक अपनी अपनी कोई किताबें निकाल लेगा। नहीं, कुरान ने अहले किताब या उतुल किताब सिर्फ उनको कहा है जिनके पास तौरात या इंजील आई, बस, ठीक है, औरों को नहीं। तो जब शादी करना चाहो औरत से तो मोहसिना औरत से करो, चाहे वो ईमान वालों में से है या मिनल लदीना उतुल किताब मिन कबलिकुम, या जो तुमसे पहले आए अहले किताब में से। तो इसका मतलब अहले किताब की औरत से मर्द शादी कर सकता है, औरत अहले किताब के मर्द से शादी नहीं कर सकती। ठीक है, मोहसनात का आया लफ्ज, ठीक है, आपको ये समझना चाहिए मोहसनात अलिफ ता एंड में औरत के लिए होता है। तो इससे हमें पता चला कि वैसे तो हलाल है, लेकिन एक चीज को समझना चाहिए कि जो इसके साथ खुदा ना करे जो खराबियां आ सकती हैं, या जो आगे इसमें बिगाड़ पैदा हो सकता है नस्लों में, उसको भी सामने रखना चाहिए, क्योंकि हर हालात में एक जैसी चीजें नहीं होती। हजरत हुज़ैफा जब मदाइन पहुंचे तो वहां एक यहूदी औरत से निकाह कर लिया, तो हजरत उमर को इसकी इत्तला मिली तो उनको खत लिखा कि इसको तलाक दे दो। उन्होंने पूछा कि क्या वो मेरे लिए हराम है जो कि मैं उसको तलाक दे दूं, तो उन्होंने हजरत उमर ने उनको जवाब भेजा कि मैं हराम नहीं कहता, लेकिन इन लोगों की औरतों में आम तौर पे इफ्फत और पाकदामिनी नहीं है, इसलिए मुझे खतरा है कि आप लोगों के घराने में इस रास्ते से कोई फोहश चीजों का दाखिला ना हो जाए। अब आप खुद देखें, उस जमाने में भी ये बात थी, तो आज क्या है? आज सिर्फ उनकी गोरी रंगत देख के या ब्लॉन्ड देख के उनके साथ शादियां कर लेना, सोचना कि भाई ये तो खूबसूरत है इसलिए, जबकि ये नहीं देखा कि यहाँ पे कुरान क्या कहता है। नहीं, कुरान तो कहता है अहले किताब के साथ कर लो, भाई अहले किताब के साथ कर लो, वल मोहसनात भी तो कहता है उसको तो भूल गए कि मोहसनात पाक दामन औरतें, शरीफ औरतें। अब इनमें भी पाक दामन औरतें कितनी हैं ये तो आपको खुद ही समझ आती होगी देख के कि क्या हालात हैं इनके भी। और ये अंदाजा कीजिए कि आज जो मुसलमान जोड़े हैं, जो बॉर्न मुस्लिम हैं, उनके लिए भी अपनी औलादों को दीन पे चलाना और एक दीन की तरबियत, दीनी तरबियत करना और इस्लामी माहौल में उनको परवान चढ़ाना कितना मुश्किल हो गया। तो कहाँ ये कि एक बाहर की औरत, किताबी औरत ले आई जाए और वो बच्चों की तरबियत करे, तो खुद सोचे कि कितना बिगाड़ हो सकता है। तो ये एक आदमी को सोचना चाहिए कि वो सिर्फ एक वक्ती खूबसूरती को देख के उससे अट्रैक्ट ना हो जाए, बल्कि अपनी नस्लों के ईमान का सोचे कि मेरी नस्लों की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और आज मैं अपनी थोड़ी सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अगर ये शादी कर लेता हूँ, तो कल को ये ना हो कि मेरे बच्चे ईमान से चले जाएं। जब वो बच्चे देखेंगे कि भाई माँ तो बड़ी लीनियंट है और ये बाप तो ऐसा है, तो वो कहेंगे तो इस्लाम तो बहुत टफ रिलीजन है, हम तो नहीं इस पे चल सकते, हमारा तो माँ का ही रिलीजन ठीक है जो हर चीज की आजादी देता है। ठीक है, तो समझना चाहिए कि क्या हालात के अंदर किस चीज का हालात तकाजा करते हैं इस वक्त, क्या हालात चल रहे हैं और कितने फितने, और इसके अंदर क्या सेफ होगा ये कदम उठाना। तो जब मोमिना औरतें से या मोहसिना से शादी करनी है तो उसकी शराइत है, वो भी तब करो इजा आतई तुमुहुन्ना उजूरहुन्ना, जब तुम दो उनको उनके मेहर, यानी उनके मेहर अदा करने जरूरी है। और मेहर मैंने आपको बताया था एक टोकन होता है, ये शादी के वक्त दिया जाता है, यानी एक आदमी इस चीज का समझ लें एक इकरार करता है कि आइंदा के लिए इस औरत की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, वो एक टोकन दे के इस चीज का एग्री करता है। मोहसिनीन गैर मुसाफिहीन, और ये निकाह में लाने का इरादा हो यानी घर बसाने का हो, ना सिर्फ जिनाकारी का कि सिर्फ अपनी शहवत पूरी की जाए, इसके लिए नहीं, निकाह में लाने का इरादा हो किसी मोहसिना को, औरत को, ईमान वाली हो चाहे अहले किताब हो, वला मुत्तखिदी अखदान, और चुपी दोस्तियां करने का इरादा ना हो, इसलिए उनको अप्रोच ना करो कि उनके साथ खुफिया रिलेशनशिप रखो। अब इसमें बताएं पेपर मैरिज कहां से जायज हो जाती, जबकि कहा गया कि घर बसाने का इरादा हो, निकाह करने का इरादा हो, उनको उनके मेहर अदा करो, छुपी दोस्तियां ना उनसे लगाओ, तो फ्रेंडशिप या डेट्स या ये कहां से जवाज निकल सकता है। वह मई यकफुर बिल ईमानी फकद हबी तो आमलू, और जो कोई कुफर करेगा ईमान के बाद तो तहकीक जाया हो गए उसके सारे अमल। यानी ये मसाइल बता दिए गए हैं, इनके मुताबिक ही चलना, इसी मुताबिक निकाह करना, इसके मुताबिक ही खाना पीना, ये आपके ईमान का हिस्सा है कि इंसान क्या खाता है, क्या पीता है, किधर शादियां करता है, ये भी ईमान में से चीजें हैं, ये इससे अलग बात नहीं है। तो अब इनको अगर वायलेट किया गया, इनको अगर कहा गया कि मैं इनको कुछ समझती नहीं, मैं तो अपनी मर्जी करूंगी, तो फिर हबी तआमलुहु, यानी अगर ईमान के बाद कुफर, खुल्लम खुल्ला कुफर किया, यानी अमल से इनकार कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ समझा नहीं इनको और अपनी मनमानियां की, मैं नहीं इनको मानती, या फिर मुंह से बोल के कुफर कर दिया। बाज लोग अल्लाह ताला माफ करे ये भी कहते हैं कि हाँ हम किसी साथ शादी करने के लिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्रिश्चियन हो जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने उनके उसमें वो मुब्तला होते हैं। और बाज ये ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि हमें कुरान के ये हुक्म नहीं बस मानना, ये बड़ा मुश्किल है, अफतुमिनूना बिबादिल किताबी वतकफुरूना बिबाद, वाली बात है कि बाज हिस्सा कुरान का माना, बाज का नहीं माना, यहां पे आके ये चीज हमसे नहीं होती। तो अगर ऐसा कुफर करते हो, खुल्लम खुल्ला या अमली कुफर, तो अमल जाया हो गए, वह हुआ फिल आखिरती मिनल खासिरीन, और ऐसे लोग ही आखिरत में खसारा पाने वाले हैं जो ईमान का दावा भी करें मगर अल्लाह के कवानीन को कुछ समझते नहीं है, उनका भी इनकार करते हैं। जी एक बात इसके अंदर जो खास तौर पे जो लास्ट हमने आयत पढ़ी है इस हवाले से, वो ये कि बाज दफा ऐसा होता है कि कुछ मुसलमान लड़कियां शादी करना चाहती हैं अहले किताब से, और वो किताबी मर्द शहादा ले लेता है, मुसलमान हो जाता है और समझ के मुसलमान होता है। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें भी हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसा एक इस चीज़ को भी बुराई समझ लिया गया है कि उन लोगों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, और इसको बुरा इन्फ्लुएंस समझते हैं कि हमारी बच्चियों पे बुरा असर पड़ेगा कि इसने क्यों किसी गोरे से शादी कर ली या किसी से, जबकि अगर वो मुसलमान हो गया तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि किसी एक लड़की की वजह से कोई आदमी इस्लाम ले आता है। आपको पता है हजरत उम्मे सुलैम ने अपना मेहर क्या रखा था, ये अबू तलहा से फरमाया था कि आप इस्लाम ले आए, ये उनका मेहर था। तो अब हम क्या कहेंगे, ये तो शादी करने के लिए मुसलमान हुआ। ये ठीक है, अलग बात है कि हाँ उनको थोड़ा सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर उसके बाद वो मुसलमान हो अगर उनके दिल कन्विंस होते हैं, लेकिन इस चीज को इतना बुरा समझ लेना और फिर ऐसी बच्चियों को आउटकास्ट कर देना, उनके साथ नहीं बातचीत करनी, उनको एक्सेप्ट नहीं करना उनकी शादी को, ये बहुत गलत बात है। और ये चूंकि किसी के साथ वाकया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों सबको कहूंगी कि इस चीज को खुदारा ऐसे ना बनाए कि कोई इस्लाम में दाखिल होने के लिए भी आप लोगों के रंग और नस्ल देखें और फिर सोचें कि हाँ ये पक्का मुसलमान है या नहीं है। हम किसी के फैसले करेंगे क्या? तो इस चीजों से हमें इज्तनाब करना चाहिए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अल्लाह ताला इन अहकामात पे अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। तिलावत सुनिए।
بسم الله الرحمن الرحيم
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين